व्रजामः। देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। अगले शनिवार को, सैटरडे को, 6 अप्रैल को, इस बार भारतीय नववर्ष मतलब इंडियन न्यू ईयर पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानेंगे। अपने न्यू ईयर के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सेलिब्रेट होता है। बहुत सारे हमारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा कोई न्यू ईयर होता है, तो जिनको पता नहीं उनको थोड़ा पता भी चलेगा, जिनको पता है थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपद, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का जो पहला डे होता है, उसी को हम इंडियन न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अल्दो पूरे भारतवर्ष में इसका कोई एक नाम नहीं है, न केवल भारत, मोस्ट ऑफ एशिया में इसी दिन ये न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, पर अलग अलग नामों से सेलिब्रेट होता है। और ये वही दिन है जिसमें और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जिसके कारण इस ईयर का नाम अलग अलग तरीके से होता है। विक्रमी संवत, जो इंडियन गवर्नमेंट के कैलेंडर में भी तीन तरह के कैलेंडर आपको मिलेंगे, तीन तरह के नाम, एक जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो सारे दुनिया में चलता है, जो अभी फिलहाल 2019 है, मार्च का 31st है। दूसरा विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी संवत, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद से शुरू होता है, जो इस साल अप्रैल 6 से शुरू होगा, 2076 ईयर हो जाएगा, अभी 2075 है। इसी तरह और एक कैलेंडर है जो मोस्टली साउथ इंडिया में यूज होता है, उसको शक संवत या शक कैलेंडर कहते हैं। शालिवाहन राजा के नाम से ये चलने वाला कैलेंडर शक कैलेंडर कहलाता है। इसी दिन युगाब्द भी कहा जाता है, द बिगिनिंग ऑफ द कलियुग, कलियुग को शुरू हुए आज से, आज को 5121 साल हुआ। कलियुग का शुरू का मतलब महाभारत लड़ाई के बाद युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक हुआ, करोनेशन हुआ, वो इसी दिन हुआ था, जहां से कलियुग का ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ था। तो मतलब महाभारत युद्ध को समाप्त हुए आज को 5121 साल हुआ। और सबसे इंपोर्टेंटली, हमारा जो कैलेंडर है, जो टाइम यूनिट है, वो शुरू होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को बने हुए कितने साल हुआ, ये यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, जो साइक्लिक मोड में होता है, तो करंट यूनिवर्स को बने हुए कितने साल हुआ, वो भी काउंटिंग हम इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपद से ही माना जाता है। तो इन बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में, इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में ये फेस्टिवल किस किस रूप में मनाया जाता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन के लिए। तो जनरली इसको विक्रम संवत के रूप में ये फेमस है, मोस्टली नॉर्थ इंडियन पार्ट में और साउथ इंडियन पार्ट में शक संवत या शालिवाहन। विक्रम संवत इसीलिए क्योंकि विक्रमादित्य नामक राजा, जो उज्जैनी के राजा थे, जो 56 BCE में शकों को परास्त करके राजा बने, उज्जैनी में जिनका कैपिटल था, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान तक, ईरान तक जिनका राज्य फैला हुआ था, इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे, उनके राज्याभिषेक जो करोनेशन के डे से ये डेट शुरू होता है। अल्दो आप सबको पता है कि हिस्ट्री में अलग अलग देशों में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों राजा महाराजे आए हैं अलग अलग देशों में, जिन्होंने अपने नाम पर साल शुरू किया, ईयर्स को शुरू किया, कुछ चले कुछ बंद हो गए। भारत में भी और भी बहुत सारे कैलेंडर शुरू किए गए थे, धीरे धीरे वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए, दो कैलेंडर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए, विक्रमादित्य और एक शालिवाहन शक का। तो 56 जो रेगुलर कैलेंडर आज आप देखते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, उससे 56 साल पुराना, 56 साल पहले ये विक्रमादित्य एरा शुरू होता है। इसी से रिलेटेड है शालिवाहन शक संवत्सर जो 78 एडी में शुरू हुआ, तो आज चैत्र के शुक्ल वही सेम तिथि शुक्ल प्रतिपद, तो उसको 1941 शक संवत्सर शुरू हो रहा है, फिलहाल 1940 चल रहा है। शालिवाहन जो शतवाहन डायनेस्टी के थे, जो साउथ में आजकल जिसको आंध्र और तेलंगाना का पार्ट है, वो उनके वहां कैपिटल था, और आगे श्रीलंका से लेकर वो म्यांमार थाईलैंड तक जिनका राज्य फैला हुआ था साउथ में, बहुत फेमस राजा हुए, उनके नाम पर ये शक संवत चलता है। जैसे मैंने बताया चैत्र शुक्ल प्रतिपद, बसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन, अभी आपने होली भी सेलिब्रेट किया, स्प्रिंग फेस्टिवल, कलर फेस्टिवल आपने डिटेल में सुना। वसंत ऋतु के बीच में ये शुरू होता है चैत्र मास में। हम जानेंगे कि ये चैत्र शुक्ल प्रतिपद के दिन का इतना इंपॉर्टेंस है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े एक्टिविटीज हुए हैं, जो राजा हुए हैं, सब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब न्यू ईयर के दिन ही पहला काम शुरू किया है। वो श्री राम का राज्याभिषेक हो, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो, मोस्ट ऑफ हिंदू राजाओं का राज्याभिषेक हो, वो पुराने काल से इसी दिन होता आ रहा है। जो भी उन्होंने अच्छी प्रोजेक्ट चलाई है वो भी इसी दिन से चलाने की शुरू की है, इसी नाते ये कैलेंडर चलता है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपद महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के रूप में जाना जाता है। अगेन हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और द वे ऑफ सेलिब्रेशन भी डिफरेंट होता है, कल्चरल डिफरेंसेस होता है, खान पान कपड़े मनाने के तरीका अलग अलग होता है। आगे बढ़ने से पहले और एक चीज इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, भारत में जो कैलेंडर या जो तिथि जो डे काउंटिंग होती है, फर्स्ट डे को कब से फर्स्ट डे माना जाए, उसकी दो ट्रेडिशन है। एक को हम पूर्णिमांत मानते हैं, दैट मीन्स पूर्णिमा तो समझते हैं ना, द एंड ऑफ द मंथ माना जाता है, इसका मतलब नेक्स्ट पूर्णिमा, पूर्णिमा के अगले दिन मतलब कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है ब्लैक हाफ, उसका जो फर्स्ट डे है दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ। बहुत सारे राज्यों में पूर्णिमांत का ट्रेडिशन है, जैसे पंजाब में वैशाख का पहला दिन न्यू ईयर होता है, दैट मीन्स वहां पूर्णिमा को मंथ एंड ऑफ द मंथ माना जाता है, नेक्स्ट डे वो न्यू मंथ शुरू होता है। बहुत सारे राज्यों में अमावस्या समझते को माना जाता है एंड ऑफ द मंथ, तो अमावस्या का जो नेक्स्ट डे है शुक्ल पक्ष का पहला दिन जिसको प्रतिपद कहा जाता है, उसको फर्स्ट डे ऑफ द मंथ माना जाता है। ये कैलेंडर भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से दो तरह के कैलेंडर चलते हैं। इसके कारण न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने का दो अलग अलग डेट मिलेगा, जो पूर्णिमांत को मानते हैं, पूर्णिमा जिस अंत समझते हैं, द एंड ऑफ द मंथ जब पूर्णिमा मानते हैं, उनके लिए 15 दिन और बढ़ जाता है, वैशाख के पहले दिन को वो नए ईयर सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे राज्यों में, साउथ में केरला हो, नॉर्थ में पंजाब हो, ईस्ट में आसाम हो, ये 15 दिन के बाद जो वैशाख का पहला दिन होगा पूर्णिमा के बाद, उसको नया साल शुरू मानते हैं। और जो लोग अमावस्या को एंड ऑफ द मंथ मानते हैं, वो नेक्स्ट डे को बिगिनिंग ऑफ द मंथ मानते हैं, नेचुरली बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी चैत्र मास का होता है। तो अभी हम जिसकी चर्चा करेंगे, जो अमावस्यांत है, द मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ इज अमावस्या, नेक्स्ट डे होता है शुक्ल पक्ष प्रतिपद फर्स्ट डे। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा के रूप में जाना जाता है, कोंकणी जो गोवा में कोंकणी है या कोंकणी डायस्पोरा जो केरला कर्नाटक दूसरे राज्यों में है वो उसको संवत्सर पाड़वो के रूप में जानते हैं। रिमेम्बर द वर्ड संवत्सर, दैट मीन्स ईयर। संवत भी बोला जाता है, संवत्सर भी बोला जाता है, दैट मीन्स द ईयर, वर्ष। इसी तरह राजस्थान की खास करके जो मारवाड़ी बेल्ट है वहां इसको थापना कहा जाता है, उसी दिन को। सिंधी फैमिली, सिंधी ट्रेडिशन में इसको चेटीचंड के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन इज द अमावास्यांत, दोज हु बिलीव द अमावस्या इज द एंड ऑफ द मंथ, उनके ट्रेडिशन में। कश्मीर में नवरहे या नवरोज, ये वर्ड याद रखिए, ये मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में ये जो न्यू ईयर को नवरोज माना जाता है। द वर्ड इज ए संस्कृत एंड पारसी मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड पारसी। पारसी जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, संस्कृत इंडियन कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, सिस्टरली रिलेशनशिप है, बहुत सारे वर्ड दोनों में आपको मिलेंगे। नवरोज या नवरहो आगे आपको सुनने को मिलेगा, इसको ध्यान में रख के चलिए। नव कहते हैं नव, संस्कृत में नव मीन्स न्यू, रोज ये संस्कृत वर्ड है, रोज पारसी वर्ड है जिसका मतलब है डे, तो न्यू डे मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कश्मीर में भी पारसी का इंपैक्ट है तो इसलिए नवरोज। चैरावा ये मणिपुर में जो मैत्री कम्युनिटी है उनके कैलेंडर में सेम डे को नए साल के रूप में मनाते हैं विथ डिफरेंट नेम, दैट इज चैरावा। इसी तरह कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो आज दो भाग में बंटा हुआ है, तेलंगाना और आंध्रा, उस कम्युनिटी में उस एरिया में इसको उसी दिन को उगाड़ी या युगाड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। रिमेम्बर द वर्ड युगादि, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आदि मीन्स बिगिनिंग, युग मीन्स एरा। अभी जैसे हमने बताया कली युग का आरंभ भी इसी दिन माना जाता है, द वो न्यू ईयर के, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के पीछे हजारों अलग अलग हिस्टोरिकल इंसिडेंट एविडेंस होते हैं। तो कर्नाटक और आंध्रा तेलंगाना साइड में इसका नाम ही है युगादि, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म होकर के तो कहीं उगाड़ी कहते हैं, कहीं युगादि, मीन्स द बिगिनिंग द फर्स्ट डे ऑफ द युगा, कलियुग का पहला दिन है। और ये आपने अभी सुना जो अमावस्या के नेक्स्ट डे मतलब शुक्ल पक्ष के प्रतिपद को मानते हैं फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अब देखेंगे जो लोग पूर्णिमा को एंड ऑफ द मंथ मानते हैं वो 15 दिन का लेट होता है उनका, वैशाख के पहले दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन से राज्य हैं? जैसे पंजाब, मोस्ट ऑफ हरियाणा पार्ट जो पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड है वो वैशाखी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा पर्व है। वैशाखी का मतलब वैशाख मास आप समझते हैं, चैत्र के बाद वैशाख आता है, तो वैशाख के पहले दिन को वो नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह ये तो हुआ नॉर्थ में, और अगर ईस्ट में जाएं इधर बिहार के जो मिथिला पार्ट है, जो नेपाल है, वहां इसको शीतल जुदे शीतल और पहली वैशाख, पहली से आप समझ रहे होंगे पहला वैशाख, द फर्स्ट डे ऑफ वैशाख मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बंगाल में भी उसको पहला वैशाख बोलते हैं। तो और ये जो वैशाख के पहले दिन को 15 दिन के गैप के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। एक और ट्रेडिशन है इंडिया में हमारे कैलेंडर में, अभी जितना आपने देखा दो तरह के कैलेंडर इंडिया में चलते हैं। आप कहेंगे इतने सारे वेरिएशंस क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली बाय नेचर इंडियन कम्युनिटी इज ए वेरी मच डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड ये वेस्टर्न कल्चर से हमने सिक्के डेमोक्रेसी नहीं लाए, ये खून में हमारा होता है। हर व्यक्ति हर कम्युनिटी थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचता है, अपना चीजें बना लेता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, ये हमेशा से रहा है। इसीलिए हमारे रिलीजन में भी देखेंगे काफी सारे वेरिएशंस होता है, कोई किसी को टोकने बोकने वाला नहीं है, समझाते हैं एक दूसरे को, पसंद नहीं करते नापसंद करते हैं, पर दैट डजंट मैटर। इसीलिए वेरिएशंस मिलता है, अगर हम यूरोप में होते और कहीं होते तो सब मिला के कोई बड़ा राजा कोई पोप टाइप का आता, तलवार से डंडा मार के गोली मार के सबको एक करवा देता, पर हमारे यहां कभी ये ट्रेडिशन रहा नहीं। कोई एक दूसरी चीजों को मानता है, लेट इट बी, कोई राजा कोई महाराजे कभी इसको इस तरह के अपोज नहीं करते थे कि भाई सबको यूनाइटेड होना है, इसके पक्ष में नहीं थे। इसके कारण हमारे बहुत सारे चीजों में वेरिएशंस मिलता है। हमारे कैलेंडर, दो तरह के कैलेंडर यूज होता है, इवन आज भी हम जब फेस्टिवल्स करते हैं दो तरह के कैलेंडर से फेस्टिवल करते हैं, एक सोलर कैलेंडर होता है जितने आप संक्रांतियां मनाते हैं, अभी मकर संक्रांति मनाई, अभी विषु संक्रांति आ रही है, सब सोलर कैलेंडर के हिसाब से ये फेस्टिवल्स होते हैं। बाकी जनरली हमारा लूनर कैलेंडर से चलता है, चंद्र के हिसाब से जो तिथियां जो कहते हैं वो लूनर कैलेंडर होता है, जो संक्रांति होता है वो सोलर कैलेंडर होता है। तो कुछ राज्यों में सोलर कैलेंडर के हिसाब से नए साल को मनाया जाता है, वो इस चैत्र शुक्ल के आसपास, चैत्र और वैशाख के आसपास पड़ता है, इस 15 दिन के अंदर ही। उनमें से तमिलनाडु और केरला साउथ में पड़ता है, जिसको वो पठंडो या वरुड पिरप्पू कहते हैं, और केरला में इसको विशु कहते हैं। विशु क्यों? क्योंकि जो संक्रांति है, जो 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 ट्रांजिशन पीरियड होता है वन मंथ टू अनदर मंथ, सोलर मंथ, इसको विषुव मंथ बोला जाता है, विषुव संक्रांति। जैसे मकर संक्रांति में मकर राशि से वो गुजरता है, ये विषुव संक्रांति, कोई इसको विषु के रूप में सेलिब्रेट करता है, कोई विषुव संक्रांति, कोई विहु के रूप में, केरला में इसको विषु कहते हैं। असामीज न्यू ईयर वो विहु बोलते हैं, असमीज में शाह को हा हो जाता है तो विशु को विशु विहू बन जाता है, उनके लिए इसको रंगोली बिहू, कहीं कहीं उसको बोहक बिहू के रूप में जाना जाता है। इसी तरह उड़िया कैलेंडर में इसको विशुभ संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करता है, अगेन आज ए न्यू ईयर। तो आपने देखा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग नेपाल वगैरह को जो हिंदू ट्रेडिशन है, वहां ये न्यू ईयर या तो अमावस्यांत होने पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पूर्णिमांत होने पर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, सोलर सिस्टम को फॉलो करने वाले वैशाख की जो संक्रांति है विषुव संक्रांति, ये वैसे 15 दिन में ही पड़ता है, को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वी कैनॉट से इट एज अ इंडियन न्यू ईयर, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे देशों में जो ट्रेडिशनली न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो इन्हीं दिनों करते हैं, और भी बहुत सारे एशियन कॉन्टिनेंट के, एशिया कॉन्टिनेंट से लेकर के ईस्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक आपको मिलेगा जो ये चैत्र वो द प्रॉब्लम वो ठीक है, डिफरेंस आपको लूनर और सोलर कैलेंडर और अमावस्यांत पूर्णिमांत के बेस पर है, पर ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन दुनिया के बहुत सारे देश में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। उनमें से कुछ देश देखिए जहां इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट कितना पड़ा था वो आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। बाली जो कि इंडोनेशिया का बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, शायद भारत से बाहर ये अकेली ऐसी आइलैंड है बा देश है जहां हिंदू कम्युनिटी रहती है, और ओरिजिनल हिंदू कम्युनिटी, कोई माइग्रेटेड नहीं, जैसे यूएसए में अगर हिंदू हैं तो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडियन ओरिजिन हिंदू, पर जो इंडोनेशिया में जो हिंदू हैं दे आर नॉट इंडियन ओरिजिन, वो बेसिकली इंडोनेशिया ओरिजिन है। इंडोनेशिया एक कलेक्टिव कंट्री है जिसमें हजारों छोटे छोटे आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, वो वहीं के लोकल नेटिव लोग हैं, वो इंडियन नहीं है पर वो हिंदू हैं। उसकी अलग हिस्ट्री एक कभी बाद में बताएंगे कैसे वो हिंदू बने, नॉट ओनली इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वो सारा का सारा देश जो आज लाओस से फिलीपींस, कभी वो हिंदू देश था, बाद में धीरे धीरे वो बौद्ध बने, उनमें से कुछ मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, आज भी बहुत सारे बौद्ध हैं। पर इंडोनेशिया का पूरा आइलैंड बाली और बाकी जावा सुमात्रा आदि बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ओरिजिनल हिंदू लोग हैं। उनका ट्रेडिशन बहुत इंडियन हिंदू ट्रेडिशन से अलग है, वो वैदिक ट्रेडिशन से ज्यादा क्लोज है। इंस्टीट्यूट ऑफ जो मॉडर्न हिंदू इंडियन हिंदू को हम देखते हैं, मॉडर्न हिंदू वाले ज्यादा मूर्ति पूजा और मंदिर ये सब करते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा कंटैक्ट इंडियन से नहीं हुआ। तो ओरिजिनल फॉर्म आज भी है, जो लोग आप में से बाली गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, उनके हिंदू टेम्पल में कोई मूर्ति नहीं होती है, मैदान होता है, एक बड़ा सुंदर दरवाजा होता है, वो अंदर सब मैदान में बैठते हैं, प्रेयर करते हैं, भूर्भुवस्व पांच मंत्र उनका होता है करते हैं, पर सामने कोई मूर्ति या किसी विष्णु की, भगवान की, या किसी शिव की, गणेश की मूर्ति नहीं होती है। तो खैर, वो जो बाली है, उनकी जो बालीनिज न्यू ईयर है उसको वो नेपी कहते हैं, वही चैत्र शुक्ल प्रतिपद को। इंडोनेशिया का दूसरा एक प्रोविंस है जावा, जिसको वो सातु सुरो कहते हैं, ऑल्दो इट्स ए मुस्लिम डोमिनेटेड बट स्टिल दे सेलिब्रेट इट। थाईलैंड में उसको संक्रान कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये संक्रान किससे मिलता जुलता शब्द है, संक्रांति से, मतलब जो विषु संक्रांति है उस संक्रांति को वो न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो संस्कृत वर्ड का जो थाई में थोड़ा सा बिगड़ गया वो संक्रान बना। इसी तरह लाओस को वो पाई माई लाओ और लोकल भाषा में संक्रान संकान बोलते हैं, वही उसी का बिगड़ा हुआ रूप है संक्रांति का। कंबोडिया जो खमेर शासन था, खमेर जाति के लोग हैं, वो भी उसको चावल छनाम थमेई करके मनाते हैं। थोड़ा बहुत पिक्चर आप देखेंगे, वो बड़े ऑथेंटिक पिक्चर हैं, जो उस दिन जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, हर इसके साथ आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। वो पिक्चर है कि वो अपने न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ चीजें उसमें कॉमन भी आपको दिखेगा, उनके कल्चर का झांकी भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह जो ईरानियन, जो जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, ज़ोरास्ट्रियन जो ईरान में थे, आजकल तो वो ज़ोरास्ट्रियन इधर उधर सब उनको मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, थोड़ा बहुत जो बचे हैं इंडिया में, कुछ बचे हैं, कुछ यूएसए में, और बहुत थोड़े बचे हैं। तो अभी ह्यूस्टन में वो ज़ोरास्ट्रियन का एक बहुत बड़ा सुंदर टेम्पल भी बना है, तो वो नवरोज के रूप में मनाते हैं। अगेन नवरोज, नव मीन्स नव, जिसे अपभ्रंश वर्ड ऑफ नव, रोज मीन्स डे, नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और वो उनके भी वहीं 3000 साल से ये ट्रेडिशन है, ऑलमोस्ट वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में, और जो आपके ब्लैक सी बेसिन, बल्कन्स, जो यूगोस्लोविया वगैरह है, जो ईस्टर्न यूरोप में ये सेलिब्रेट होता रहता है न्यूयॉर्क के रूप में। उनका नाम देख लीजिए, अल्बेनिन कंट्रीज में ये नवरोजीत, अजरबैजान में नवरोज, पॉलिश मतलब जो पोलैंड कंट्री है वहां के लोग पॉलिश हैं, तो वो उसको नवरक, वो नव वर्ड जो संस्कृत में होता है न्यू, अंग्रेजी में भी न्यू इसी संस्कृत नव से बना है, न्यू उसी से आपको मेल तक आएगा। स्लोवक में कुर्दिश ट्रेडिशन जो इराक और सीरिया के बॉर्डर में रहते हैं, किर्गिस्तान जो सोवियत रूस का पार्ट था, आजकल अलग देश है, पश्तो बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग होते हैं, तजाकिस्तान, तर्की जो पूर्वी यूरोप का पार्ट है, उज्बेक, इन सब में नाम वही है, पर्शियन नाम है, संस्कृत और पर्शी के मिलावट नाम है, पर सेलिब्रेशन न्यू ईयर का वही डे रहता है। मैं इसीलिए ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, मतलब आपको ये ना लगे कि, क्योंकि हमारे अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो खून में बसा हुआ है, जब तक हमें पता ना चले जो मैं करता हूं और भी लोग करते हैं, फिर हमें लगता है या कुछ गड़बड़ है मेरे में। तो आप बताओ, और कोई करता है ऐसा, मतलब कितना भी प्रूफ दे दो कि देखो ये कर्म सिद्धांत है, ऐसा वो साइंटिफिकली कितना भी समझा दो मान जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं अगर इतना अच्छा दूसरा क्यों नहीं कोई मानता है, वहीं अटक जाते हैं, फिर मानने को मन नहीं करता क्योंकि कोई अंग्रेजी नहीं मानता। अगर कोई अंग्रेज मानने लग जाए फिर तो कल मान जाएंगे जी, सब सही कह रहे हो, तुम पंडित हो हिंदू हो तो बोलेगा ही, हमसे ज्यादा अनपढ़ हो, हमें कोई अंग्रेज बोल दे तो हम फिर से मान जाएं। तो इन्फॉर्मेशन इसलिए देना होता है कि आपको पता चले आपकी ट्रेडिशन सिर्फ आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं, दुनिया में बहुत सारे देशों में भी सेम डे में ये सेलिब्रेट होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जैसे आपको बताया कजाकिस्तान उज्बेकी वगैरह में वही मार्च और अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, उनको इसका ज्ञान तो नहीं है कि जो इंडियन कैलेंडर है तिथि है, पर उनकी जो अपनी लोकल कैलेंडर है वो उसके हिसाब से यही मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारा जनरली न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। इनके पिक्चर से आप देख पाएंगे कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, नाच गाना खाना पीना बहुत सारे चीजों का। और एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये जो आप देखते हैं जो ग्रोइंग व्हीट ग्रास, ये इंडिया में भी मोस्ट ऑफ ट्रेडिशन में ये जो गेहूं की जो छोटे छोटे प्लांट हैं उस प्लांट को यूज किया जाता है नए साल की पूजा में। और ये जो इंडिया में जो 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 यूज किया जाता है वो आपको सेंट्रल एशिया से लेकर के वेस्टर्न एशिया से लेकर ईस्टर्न एशिया से लेकर पूर्वी यूपी पूर्वी यूरोप तक आपको न्यू ईयर में सेम थिंग आपको देखने को मिलेगा। वो जो कल्चरल जो एक यूनिटी है वो आपको देख, खान पान में नेचुरली अलग होता है, आप लोग बेटर जानते हैं। अब आते हैं, ये तो आपको पता चला कि न्यू ईयर कैसे कैसे हमारे देश में और अलग अलग देश, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में और दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे सेलिब्रेट होता है, ये पता चला। अब आते हैं टॉपिक पर कि क्यों हम इसी दिन को चूज करते हैं। पहली रीजन है हमारी जो अपने पूर्वजों की जो वैदिक ट्रेडिशन ऑफ कॉस्मोलॉजी है, सृष्टि विज्ञान का जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आजकल आप साइंटिस्ट होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मोजोनिस्ट होते हैं, जो सृष्टि कैसे बनी कब बनी उन पर रिसर्च करते हैं, पर आपको यह गौरव होना चाहिए कि आपके देश में ये इस चीज को समझने के लिए पिछले 3,000, 4,000, 5,000 साल से पहले इसके ऊपर स्टडी होता आ रहा है। वो कितना आज के न्यू डाटा के साथ मैच करता है नहीं करता इट्स डिफरेंट मैटर, पर इसकी स्टडी हमारे यहां 4,000, 5,000, 3,000 साल पहले से होता आ रहा है कि ये यूनिवर्स कैसे बना, कब बना, कैसे डेवलप हुआ, उसकी अपनी हमारी सिस्टम है। तो जो हमारा जो हिंदू या जो वैदिक ट्रेडिशन ऑफ कॉस्मोलॉजी है उसके हिसाब से चैत्र शुक्ल जो शुक्ल प्रतिपदा या जो ये जो मार्च अप्रैल का जो भी मंथ हो उसमें इस यूनिवर्स को बने हुए इतने साल हो गए 1,972,949,120 हुए इस क्रिएशन को बना हुआ है। इसका मतलब ये जो न्यू ईयर है वी आर सेलिब्रेटिंग इज ए न्यू ईयर एज द एनिवर्सरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। आपको लगेगा कि ये डाटा आपको कहां मिला, कैसे आपने फिक्स किया कि ये इतने सारा है, तो आपको एक दो मिनट में जो हमारी जो टाइम यूनिट जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है जिसको वो फॉलो करते हैं थोड़ा सा हल्का झलकी, क्योंकि ये हर चैप्टर हर सब्जेक्ट अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, पर समझने के लिए थोड़ी सी बस आपको झलक देख के चलूंगा। हमारे यहां जो टाइम यूनिट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो परमाणु होता है, आप देख सकते हैं इस एक सेकंड के कितना छोटा हिस्सा है। उसके बाद अणु त्रसरेणु में डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम चलेंगे सीधे एक लास्ट में पहुंच जाइए, लास्ट वाली लाइन देखिए, संवत या संवत्सर, वन ईयर मतलब वन ईयर मीन टू आयन, उत्तरायण एंड दक्षिणायन सिक्स मंथ का 360 डेज, और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी बड़ी टाइम यूनिट्स आती हैं जिसमें जिसको हम कली युग त्रेता युग द्वापर युग सत्य युग वगैरह बोलते हैं। ये कोई माइथोलॉजिकल युगाज नहीं जहां सत्य लंबा होता था, वो धर्म ज्यादा होता था, ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरी है। द रियलिटी इज दीज आर द यूनिट टाइम यूनिट्स, जैसे आप साइंस में भी यूज करते हो, एस्ट्रोनॉमिकल में आप एक स्टार्स को काउंट करने के लिए आप कहते हो लाइट ईयर्स हैं, तो लाइट ईयर्स को जैसे आप एक पर्टिकुलर वे में करते हो, इसी तरह युगाज होते हैं, युग महायुग मन्वंतर कल्प ब्रह्मा डे ब्रह्मा ईयर। तो ब्रह्मा डे का मतलब नहीं ब्रह्मा का दिन या शिव का दिन, इट्स ए अगेन इट्स ए टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द टाइम यूनिट। अब कंक्लूड करने के लिए 100 ब्रह्मा ईयर्स, अब कितने साल हुआ होगा, टाइम पीरियड ऑफ एवरी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, एंड 100 ब्रह्मा ईयर्स द टाइम ऑफ एवरी डिसोल्यूशन पीरियड ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ये जो वेकिंग स्टेट में रहता है 100 ब्रह्म वर्ष तक, 100 ब्रह्म वर्ष तक प्रलय स्टेज में रहता है, मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है। तो ये मैंने थोड़ा झलकियां दी कि ये कोई रैंडमली हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं बनाया, उनकी अपनी सिस्टम है, कैलकुलेशन है, कॉस्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो टाइम डेट आपको दिया गया क्रिएशन को इतने ही साल हुआ, ये बेस्ड ऑन जो बिग बैंग से लेकर के द डे द बिग बैंग हैपेंड, उससे हमारी अपनी काउंटिंग है। उनको कैसे पता चला वो आपका काम है, आप पढ़िए शास्त्र पढ़िए आपको पता चलेगा। कैसे पता चला तो मत पूछिए, क्योंकि हम किसी साइंटिस्ट को नहीं पूछते तुम्हें ये कैसे पता चला, पढ़ा रिसर्च किया लेबोरेटरी में गया पता किया, आप जाओ लेबोरेटरी जाओ देखो, तो आप आओ शास्त्र पढ़ो सब पता चलेगा। द यूनिवर्स बिगिन्स फ्रॉम ए पॉइंट विद ए बिग बैंग थ्योरी जो आप कहते हैं, एंड इट विल बी एंड इट विल एंड इन ए पॉइंट विद ए क्रंच जो होगा। तो वो जो जब से यूनिवर्स शुरू हुआ आज तक, इसको हमारे अपने जो कल्चर में जो काउंटिंग है वो आपको बताया 1 बिलियन इतने इतने मिलियन से है। तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपद न्यू ईयर जो है वो उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए होता है। दूसरी चीज, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपद, इसी दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। पहली बार जब राज्याभिषेक उनका होना था वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपद न्यू ईयर के दिन ही सिलेक्ट किया गया था, बाद में उसको अगले दिन वनवास जाना पड़ा और वो भरत को प्रमिश करके गए थे, मैं 14 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उसी दिन अयोध्या में पहुंच जाऊंगा, नहीं तो भरत ने बोला था अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। तो उनको उसी दिन आना पड़ा था और उसी अगले दिन उनके राज्याभिषेक हुआ। तो श्री राम चैत्र मास में ही गए थे, चैत्र मास में ही आए। इस कहने के पीछे एक चीज ध्यान रखिए, दिवाली के साथ श्री राम का कोई लेन देन नहीं, ये बताने के लिए हिस्टोरिकली एंड प्रैक्टिकली। हम अंधाधुंध कुछ मानते हैं दैट्स ए डिफरेंट थिंग, ये बताने के लिए। दिवाली की सेलिब्रेशन के साथ राम का आने का कोई संबंध नहीं है रामायण के हिसाब से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राम का दोबारा राज्याभिषेक हुआ। न केवल इतना, कलियुग की भी शुरुआत वहीं से हुई, महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को दोबारा राज्याभिषेक हुआ वो भी इसी दिन ही हुआ। इसीलिए इसको युगाब्द कहते हैं, अब्द कहते हैं ईयर, भगवता संबत संबत्सर अब्द सब ईयर्स के लिए संस्कृत में वर्ड आता है। और वो ट्रांजिशन पीरियड था, युधिष्ठिर बने फिर परीक्षित फिर जन्मेजय तक कलियुग आ गया था, वो ट्रांजिशन पीरियड था कलियुग का। युधिष्ठिर का जो सेकेंड टाइम राजा बनना महाभारत लड़ाई के बाद, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ कलियुग। जैसे एक युग से दूसरे युग को ट्रांसफर होने में जो टाइमिंग लगता है उसको हम ट्रांजिशन पीरियड या संध्या काल कहते हैं, जैसे दिन और रात के बीच का युधिष्ठिर का काल था। और आगे विक्रमादित्य शालिवाहन लेकर के और हमारे राजा बाकी बहुत सारी चीजें आते गए और हम सेलिब्रेट करते गए। देवियों सज्जनों, ये जो भारतीय नववर्ष है, जो भी आपके स्टेट इस राज्य से आप बिलोंग करते हैं आपकी हिसाब से जो भी है, वैशाखी है, चैत्र शुक्ल है, गुड़ी पड़वा है, जो भी चेटी चंड है, जो भी है, वो आप समझ के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ क्यों आप सेलिब्रेट करते हैं, जरूर धूमधाम से सेलिब्रेट करिए। अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी बुलाइए जैसे आप दूसरे त्योहारों को मनाते समय करते हैं। अपने उन फ्रेंड्स को भी बुलाइए जो नॉन इंडियन है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीजों को माने नहीं, मनाए नहीं, सेलिब्रेट ना करें, बोले नहीं, दूसरे को पता कैसे चलेगा कि मैं क्या हूं, क्यों। आज चाइनीज न्यू ईयर स्कूल्स में मनाया जाता है, हर उस पब्लिक स्कूल में चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है, छुट्टियां भी होती है। अमेरिका में मोस्ट ऑफ अमेरिकन्स नो व्हाट इज चाइनीज न्यू ईयर, क्यों? क्योंकि चाइनीज खुद उसको मनाते हैं, खुद उसमें प्राउड फील करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी चीजें कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि हम ही नहीं जानते, हम ही नहीं मनाते, हम ही नहीं प्राउड फील करते, दूसरे को क्या पड़ी है। हम शुरू करें मनाना, सेलिब्रेट करना, प्राउड फील करना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को बताना, तो लोगों को पता चलेगा। हो सकता है 50 साल के बाद, 25 साल के बाद यूएसए के पार्लियामेंट में भी अनाउंस हो कि इंडियन न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया जाए, पर वो अपने आप नहीं होगा। जब हमारे अंदर अपनी इच्छा नहीं है तो क्यों होने वाला है। इसीलिए हम इसको जैसे आपके पूर्वज सेलिब्रेट करते थे, जैसे आपके जो बंधु रिश्तेदार भारत में रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, वो दुनिया के उस सब देशों में जिनका नाम मैंने लिया या जिनका नहीं ले पाया वो सेलिब्रेट करते हैं, हम भी इसको सेलिब्रेट करें खुशी मनाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि हमारा भी एक ट्रेडिशन है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, कैलेंडर का, न्यू ईयर का, और इस गौरव भाव के साथ हम उनको मनाएं और एंजॉय करें लाइफ को। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।